खुदावन के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावन का शुक्र हो आज के दिन के लिए। इससे पहले कि हम उसके कलाम को सीखना शुरू करें, आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें और खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। तो भाई क्रिस, मेरे पास कितना वक्त है आज कलाम के हिस्सा के लिए, क्योंकि 5:50 हो चुके हैं। चलो ठीक है, फिर हम छोटा सा पैगाम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो आए मेरे साथ खुदा के हुजूर झुके। खुदा खुदावन खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की हमद और सताइश करते हैं तेरे आए हुए तमाम मुकद्दस लोगों के लिए, क्योंकि खुदावन तूने कहा है कि अगर हम अपने गुनाहों, गलतियों, खताओं को तेरे हजूर कबूल करें तो तू वाहद खुदा है जो इस काबिल है कि हमें पाक और साफ कर सकता है और हमारी सारी नाराजगी को धोकर हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है। सो खुदा बाप, आज जो कुछ भी हम सीखें हम सब के लिए बरकत, कुदरत और तरक्की का बायस ठहरे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अपने हम सब के पास वक्त थोड़ा है, लेकिन हम खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे। और हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं रूहुल कुद्दस के बारे में, और कल हमने सीखा था कि रूहुल कुद्दस ईमानदारों के अंदर रहता है। और ये कब होता है? जब कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो रूहुल कुद्दस ईमानदारों के अंदर दाखिल हो जाता है, यानी कि ईमानदार रूहुल कुद्दस की रहने की जगह, ईमानदार रूहुल कुद्दस के सुकूनत करने की जगह बन जाता है। और जैसे हमने बाइबल में से बहुत से हवाला जात को देखा था, ना सिर्फ रूहुल कुद्दस बल्कि खुदा खुद, खुदावंद यीशु मसीह और उसका पाक रूह ईमानदारों के अंदर आ जाता है। इसीलिए हमने ये बात कल सीखी थी कि इस मौजूदा दौर में, इन बुरे हालात में, इन आने वाली आफतों का सामना करने के लिए खुदा ने ये कुव्वत और ताकत ईमानदारों को बख्शी है कि हम उन तमाम परेशानियों पर, तमाम अबलीस के झूठों पर, उसके जलते हुए तीरों पर गालब आ सकें। और आज हम सीखेंगे रूहानी नेमतों के बारे में कि रूहुल कुद्दस ने जो रूहानी नेमतें ईमानदारों को बख्शी हैं, और इन रूहानी नेमतों की दो इकसाम है, यानी कि दो किस्म की हैं। एक वो नेमतें हैं जो ईमानदारों को दी गई, जो के आरजी नेमतें हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, हम आगे चलकर सीखेंगे। एक वो नेमतें हैं जो ईमानदारों को मुस्तकिल तौर पर दी गई हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे रूहुल कुद्दस की नेमतों के बारे में कि रूहुल कुद्दस जब हमें नेमत देता है तो उसके साथ एक नया मकसद देता है। आज हम सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे वक्त को मद्देनजर रखते हुए, और आने वाले दिन में इस पर और गहरे तौर पर सीखेंगे। क्यों? बाइबल मुकद्दस में से आज हम देखेंगे कि क्यों हमें रूहानी नेमतें बख्शी गई हैं। आप में से हर एक को रूहुल कुद्दस ने निजात के वक्त रूहानी नेमत दी है ताकि खिदमत का काम किया जाए। तो मेरे साथ निकालें इफिसियों 4:11 उसकी 11वीं आयत से हम देखेंगे। नए अहदनामा में पालूस रसूल का खत इफिसियों उसका 4:11 उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। और यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल उस बात को याद रखते हुए रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में लिखता है, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा गया उसका बदन, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो जमीन के नीचे गया और वहां जा पर के उसने मनादी की और क्या किया, वहां पर उन कैदी रूहों को छुड़ाकर वो आसमान पर ले गया। और फिर 11वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल, और उसी ने ये, उसी कौन, उसी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ? खुदावंद यीशु मसीह के लिए। तो क्या कहता है पालूस, और उसी ने बाज को रसूल, बाज को नबी, और बाज को मुबशर, और बाज को चरवाहा, और बाज को उस्ताद बनाकर दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने ये खिदमात दी। और यहां पर हम देखते हैं रसूल, जैसा कि मौजूदा दौर में अब जमीन पर कोई भी रसूल नहीं सवाए 12 शिगिर्दों के। ये यीशु मसीह ने अपने शिगिर्द मुकरर किए थे ताकि उसकी उसके हुक्म की तकमील की जाए। फिर उसके बाद नबी, जैसे पालूस रसूल ने नबूवत की, दाऊद नबी ने, यसाया नबी ने, यर्मिया नबी ने, मूसा ने और दूसरे बहुत से नबियों ने नबूवत की। तो ये किसने मुकरर किए? खुदा ने। जैसे बाइबल मुकद्दस कहती है यर्मिया के बारे में कि खुदा ने उसे उसकी माँ के पेट ही से मुकरर किया कि वो उस कौम के लिए क्या हो? नबी हो। तो यहां पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने रसूल मुकरर किए, नबी मुकरर किए, और फिर क्या लिखा है? मुबशर। मुबशर का मतलब है यानी वो जो तबलीग करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्होंने पहले खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं सुना या खुशखबरी नहीं सुनी। और ये है मुबशर की खिदमत। फिर उसके बाद चरवाहा, यानी कि वो जो कलाम सिखाता है, जिसे निगाहबान भी कह सकते हैं, जिसे पादरी भी कह सकते हैं। और फिर आगे क्या कहता है पालूस? उस्ताद बनाकर दे दिया, यानी कि वो लोग जो बाइबल मुकद्दस को गहरे तरीके से दूसरे लोगों को सिखाते हैं, यानी कह सकते हैं कि पादरियों को सिखाते हैं जाके, ताकि वो जाकर दूसरे पादरियों को सिखाएं। और यहां पर क्या है? रूहानी नेमतों के बारे में बात की जा रही है। और इन रूहानी नेमतों का मकसद क्या है? 12वीं आयत में हम देखते हैं पालूस कहता है खुदा का मकसद क्या है? रसूल बनाने का, नबी बनाने का, मुबशर बनाने का, उस्ताद बनाने का, पादरी बनाने का, या क्या कहते हैं कि चरवाहा बनाने का। 12वीं आयत को देखें और गौर से सुने, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। इस आयत में हम तीन बातें सीख सकते हैं। खुदा ने इसीलिए अपने बंदों को मुकर्रर किया है, जैसे मैं आज आपकी खिदमत में कलाम को पेश कर रहा हूं, किस लिए? ताकि आप रूहानी तौर पर, जहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कामल बने, इसका मतलब है रूहानी तौर पर हम परवरिश पाएं। जैसे बच्चा खून और गोश्त में बढ़ता है और अपने माँ बाप से सीखता है जिंदगी के बारे में, बोलना, चालना, सोचना, झूठ, सच, तारीकी के बारे में, रंगों के बारे में, खाने पीने के बारे में, वैसे ही यहां पर खुदा का बंदा पालूस कहता है कि मुकद्दस लोग, यानी के ईमानदार, यानी कि आप में से हर वो बहन, हर वो बेटा, हर वो बुजुर्ग, हर वो बेटी जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, बाइबल उसे कहती है मुकद्दस लोग कामल बने, यानी कि रूहानी तौर पर हम तरक्की पाएं, रूहानी तौर पर हम बढ़ें। पहला मकसद ये है खुदा ने रूहुल कुद्दस की नेमतों का देने का। दूसरा मकसद, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, यानी कि कलीसिया की तरक्की के लिए उन लोगों तक जिन्होंने पहले कलाम नहीं सुना उनको बाइबल सिखाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले दिनों से बहुत दफा दरख्वास्त की गई है, किसी बहन की जरूरत है ताकि कोई बहन जो पढ़ी लिखी है वो दूसरी बहनों को, बुजुर्गों को जो बाइबल नहीं पढ़ सकती, उनको बाइबल सिखाएं। इसलिए अगर आपकी नजर में कोई बहन है या कोई बेटी है जो चाहती है खुदा की खिदमत करे, तो ये खिदमत गुजारी का बहुत अच्छा काम है कि उन बहनों को बाइबल सिखाई जाए, पढ़ना लिखना सिखाया जाए जो नहीं पढ़ सकती। तो ये किस लिए है? कि उन लोगों की तरक्की हो जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, खिदमत गुजारी का ये काम है। और तीसरी बात, मसीह का बदन तरक्की पाए। तरक्की कब पाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर जब हम कनक लगाते हैं या मकई लगाते हैं, उसकी देखभाल करने की जरूरत है, उसे पानी डालने की जरूरत है, उसे खाद देने की जरूरत है, گوڈی کرنے کی ضرورت ہے، اسے دوسری بیماریوں سے بچانے کے لیے سپرے کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی روحانی طور پر مثال کے طور پر مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے پادریوں کی ضرورت ہے، مسیح کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے مبشر کی ضرورت ہے، اور خدمت گزاری کا کام کرنے کے لیے ڈیکن جسے کہا گیا ہے، ایلڈر کہا گیا ہے، ان کی ضرورت ہے۔ سو آنے والے دنوں میں جیسے کہ ہم منصوبہ بنا رہے ہیں واپس پاکستان میں آنے کا، میری دعا ہے کہ خدا ایسے لوگ مہیا کریں جو ایلڈر کی خدمت یعنی کہ بزرگ کے طور پر کلیسیا کی دیکھ بھالی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بہنوں کی ضرورت ہے جو آپ کو بائبل مقدس پڑھا سکیں، سنڈے اسکول میں جیسے بھائی طاہر، بھائی کرس، بھائی راجو اور دوسرے باقی سمارے بہن بھائی سرگرم عمل ہیں، بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کس لیے؟ ہر ایک کو آپ کو کوئی نہ کوئی نعمت ملی ہے۔ ہم آگے چل کر دیکھیں گے، آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، ابھی 11 منٹ ہوئے ہیں اور ہم آخری منٹ میں اس پیغام کو ختم کریں گے۔ صرف آج آپ تک بڑی تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں روحانی نعمتیں دینے کا مقصد کیا ہے، خدا نے کیوں یہ خدمات دی ہیں، اور کون سی وہ نعمتیں ہیں جو عارضی ہیں، اور وہ کون سی نعمتیں ہیں جو مکمل طور پر مستقل ہیں، ہم بائبل میں سے سیکھیں گے۔ اس لیے آج آپ اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، خدا نے آپ کو کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے، نصیحت کی ہو سکتی ہے، تربیت دینے کی ہو سکتی ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہو سکتی ہے، چرچ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کی ہو سکتی ہے، لوگوں کو پڑھانے کی ہو سکتی ہے، دوسروں کی نصیحت اور تربیت کرنے کی خدمت ہو سکتی ہے، انتظامیہ کی خدمت ہو سکتی ہے، پادری کی خدمت ہو سکتی ہے، مبشر کی یعنی کہ دوسروں تک پیغام پہنچانے کی خدمت ہو سکتی ہے، بہت سی خدمات ہیں، دعا کرنے کی خدمت ہو سکتی ہے۔ ہم آگے چل کے ان باتوں کو دیکھیں گے، اور اسی باعث مسیح کا بدن ترقی پاتا ہے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری زندگی کا، اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور اپنی زندگی میں خدا پاک روح کی آواز کو سنیں، اور اس سے کہیں کہ مجھے بتا خدا پاک روح، میری زندگی کے لیے تیرا مقصد کیا ہے، میں کس طرح اماندار بہنوں اور بھائیوں کی ترقی کا باعث بن سکتی ہوں، بن سکتا ہوں، میں اپنی تعلیم کو، اپنے تجربے کو کس طرح استعمال کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تاکہ یسوع مسیح نام عزت اور جلال پائے، بچے ترقی کریں، بہنیں بائبل پڑھ سکیں، اور مسیح کا نام ملک پاکستان میں پھیلے۔ خدا باپ آج کے پیغام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔